यज्ञ की साधन सामग्री से राजभवन भर गया। दुर्योधन के सहायक किसी कार्य में रुकना नहीं जानते थे। राजभवन के सम्मुख पांडवों के मंडप से भी भव्य यज्ञ मंडप बनाया गया। शौनक, भृगु, च्यवन, कर्ण आदि सम्मान ऋषियों के निमंत्रण भेजे जा चुके थे। आसपास के सभी नरेशों को भी निमंत्रण भेजा जा चुका था। कृष्णा चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। उदित क्या हुआ? घिर आया, क्योंकि उस दिन आकाश की सदैव नयना मनोरम नीली छत प्रातःकाल से ही काले भूरे बादलों से आच्छादित हो गई थी। इससे मेरा मन खिन्न हो उठा था। कहीं प्रकाश नहीं था, सारा वातावरण घुटा घुटा सा लग रहा था। दुर्योधन के यज्ञ के लिए शुभकांक्षाएं युक्त व्यक्त करने के लिए गंगा के पात्र में खड़े होकर मुझको सूर्यदेव को अर्घ देना था। यज्ञ में पहली संविधा अर्पण होने तक मैंने पात्र में खड़े रहने का निश्चय किया था। इसीलिए गंगा की ओर जाने के लिए मैं अपने भवन से बाहर निकलने लगा। भवन में विष्णु मंदिर के सम्मुख प्रतिदिन प्रातःकाल मेरे उठने से पहले ही शौन की पत्नी मेघमाला अल्पना चित्रित कर जाती थी, परंतु उस दिन नित्य की भांति वह अल्पना चित्रित नहीं कर गई थी। सिर झुकाकर गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी अल्पना उकाड़ती हुई वह मुझको मंदिर के सामने दिखाई दी। मेरे पदक्षेपों के हाथ पाते ही बड़ी तत्परता से अपने को संभालती हुई वह तत्क्षण उठ खड़ी हुई, परंतु जल्दी में उठते समय उसके हाथ का पंच पात्र नीचे गिर पड़ा। उस पात्र में रखी धवल अल्पना, रक्तवर्णी कुमकुम और पीतवर्णी हल्दी एक दूसरे में मिल गई। उसने अपने हाथ से पंचपात्र गिरने को एक अपशकुन समझा। कुछ भी हो, स्त्रियों का मन शंकालु होता है। मेघमाला सहम सिकुड़कर क्षण भर खड़ी रही और फिर दूसरे ही क्षण अल्पना संवारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। उसकी व्याकुलता देखकर मैं हंसता हुआ उसे बोला, उस अल्पना को वैसी ही रहने दो। धवल रंग की उस अल्पना पर लाल और पीली छटाएं बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। बिना बोले गिरी हुई अल्पना को मेरे कहने से वैसे ही छोड़कर वह चली गई। बहुत देर तक मैं विविध रंगों छटाओं वाली बिखरी हुई उस अस्त व्यस्त अल्पना को देखता रहा। मैं मन ही मन श्वेत, पीत और रक्तमणि चटाओं का चिंतन करता हुआ राजभवन के सोपान उतरने लगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे ही सोपान होते हैं। ये सोपान होते हैं घटनाओं के। कभी कभी प्रकृति इन सीढ़ियों को एक के सामने एक रखकर मनुष्य को क्षण भर में लक्ष्य के ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती है, तो कभी कभी घटनाओं को इन सीढ़ियों को एक के सामने एक रखकर व्यक्ति को अंधी खाई में पहुंचा देती है। मैं सभी सोपान उतर कर नीचे आया। राजभवन के सामने का चौक आया। चौक के तालाब में सदैव की भांति नील गगन की पृष्ठभूमि पर चमकने वाला सूर्य का प्रतिबिंब मुझको दिखाई नहीं दिया। उसमें जो प्रतिबिंब मुझको दिखाई दिया वह यज्ञ मंडप के श्वेत मटमैले वस्त्र की छत का। हाँ, कुछ राजहंस विवाह उठाया वो उस तालाब के जल में वेग से प्रदक्षिणा लगा रहे थे। उन शुभ्र वर्ण बच्चियों को देखते मुझको शकुनी मामा की याद आ गई। जल मिश्रित दूध वैसे राजहंस अपना इच्छित दूध मात्र ले लेते हैं, यह उन्होंने मुझको अश्वत्थामा को प्रत्यक्ष करके दिखाया था। और उसको याद कर मेरे मन में आया कि मनुष्य भी जीवन में से अपनी इच्छानुसार अच्छा बुरा शुभ अशुभ चुना करता है। उन पक्षियों की ओर कौतुक भरी एक दृष्टि डालकर मैं रथशाला की ओर मुड़ा। सत्यसेन रथशाला में रुके रखे कुरुओं के रथ हटाकर अभ्यागतों के रथों के लिए स्थान रिक्त कर रहा था। महायोग में भाग लेने बहुत से आमंत्रित आने वाले थे। मुझको देखते ही वह सामने आया। मैंने उसको अपना नियत श्वेत वर्णी घोड़ों का रथ जोड़ने को कहा। कुछ देर से ही वह सज्जित हो जा गया। मेरे रथ में चढ़ते ही हाथ में लगे कोड़ों की घोड़ों के पीठ पर फटकारते उसने कहा, कहाँ ले चलूं रथ? गंगा तट पर। यज्ञ मंडप की सजावट को अंतिम देने का प्रयत्न करते हुए सेवकों की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, वास्तव में नियमानुसार मुझे अकेले को गंगा की ओर जाना चाहिए था। यह बात मेरे ध्यान में भी नहीं आई। मैं कारण या सत्यसेन को साथ लेकर जा रहा था, परंतु अब उसको लौटाना उचित नहीं था। कभी कभी बिना किसी कारण के भी मनुष्य भूल कर बैठता है। उसको साथ लेकर मैंने ऐसी ही भूल की थी। हस्तिनापुर के सभी मार्ग नगरजनों से खचाखच भरे हुए थे, परंतु किसी के भी क्रियाकलाप से उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि आकाश में गिरा होने के कारण मुझको ऐसा लग रहा हो मन की जैसी स्थिति होती है वैसा ही आंखों को दिखाई पड़ता है। रथनगर की सीमा के समीप आया। सीमा से थोड़ी ही दूर पर गंगा थी। सत्यसेन सीमा का प्रवेश द्वार पार कर गंगा की ओर मुड़ने लगा। इतने में पश्चिम की ओर से मटमैले रंग के घोड़ों का एक रथ दौड़ता हुआ आया और मेरे रथ के पास होता हुआ प्रवेश द्वार में घुस गया। हम लोगों ने उसे देखा। रथ नीड़ पर गुरुदेव विदुर बैठे हुए थे। पांडवों को लाने के लिए दुर्योधन ने उन्हें इंद्रप्रस्थ भेजा था। पांडवों के साथ पांचाली को लेकर ही वे लौट रहे होंगे, क्योंकि रथनीड़ पर सारथी के पास वे बैठे हुए थे। इसे स्पष्ट था कि रथ में स्त्री ही होगी। पांचाली की केवल विचार से ही मेघाच्छादित आकाश की तरह मेरा मन भी आच्छादित हो गया। स्वयंवर में निर्दय आघातों से उसने मेरे मन को घायल कर दिया था। वह प्रतिशोध के तीक्ष्ण नखों से मेरे स्वाभिमान को नोचने लगा। आह, एक स्त्री द्वारा मेरी अवहेलना की गई थी, मैं यह कैसे सहन कर सका? कर्ण वीर है, धनुर्धर है, यह ढिंढोरा संसार में व्यर्थ पीटा था। कर्ण को सारथी बनाकर काल ने उसके जीवन का सारथ्य क्या अपने हाथों में नहीं लिया था? सत्यसेन गुणों पर और मेरा मन स्वाभिमान पर कशाघात कर रहा था। गंगा तट आया। नियमानुसार पात्र में खड़े रहने का मेरा स्थान भी दृष्टिपथ में आया। सूर्य दर्शन होते गंगा तट से मैं सीधे यज्ञ मंडप में जाने वाला था। इसके लिए मैं रात को इषोण को आदेश दे दिया था कि वह राजवस्त्र और भूषण गंगा तट पर ले आए। इंद्रप्रस्थ से लौटते समय जो मुकुट मेरे मस्तक पर आया था वही मुकुट भूषणागार से लाने के लिए मैंने विशेष रूप से कह दिया था। गंगा के स्वच्छ जल में खड़े होकर मैंने आंखें बंद कर ली। सदैव की भांति तेज के वाले प्रयत्न करने पर भी मेरी आंखों के आगे ही नहीं आ रहे थे। आंखें खोलकर सामने देखा, कारंडव पक्षियों के झुंड गंगा के असंख्य लहरों पर दौड़ रहे थे। विचारों और शंकाओं की भीड़ से मस्तिष्क बनना गया था। गंगा की लहरों की तरह मेरे विचार असंख्य थे। अखाड़े के दिन भी पहले इसी तरह बादल घिराए थे, वैसा ही कुछ अघटित आज भी होने वाला था। अंजलि में जल लेकर शांत मन से मैं तेज की राह देखने लगा। 3 घड़ियां यूं ही बीत गई, लेकिन तेजो दर्शन का नाम नहीं था। शंकाओं के कारण डव पक्षी मेरे मन की गंगा में हलचल मचाने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे। सत्यसेन मेरे कारण किनारे के बालू पर खड़ा था। अंत में विवश होकर मुझे लौटना ही पड़ा। जल से बाहर निकलकर सिर झुकाकर बालू रोता हुआ मैं सत्यसेन की ओर अग्रसर हुआ। मेरे भीगी अदरी का छोर बालू में घिसरता हुआ आ रहा था। शोण अभी तक राजवस्त्र लेकर नहीं आया? मैंने सत्यसेन के पास पहुंचते ही उससे पूछा। नहीं, परंतु महाराज आपके कहते कहते वह रुक गया। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उदास हो गया था, आंखें भयभीत हो गई थी। क्या हुआ सत्यसेन? कुछ न कहकर सिर झुकाकर वह यूं ही कोड़े के डंडे से पैरों के समीप बालू में रेखाएं खींचने लगा। निश्चय वह कुछ कहना चाहता था किंतु संकोचवश चुप था। हम लोग शोण की राह देखने लगे। दूर एक टिटेरी कर्कर स्वर में चिल्लाते हुए किनारों से दौड़ती हुई धूहड़ के ढेर में घुस गई। उसके आर्त स्वर कुछ देर तक वातावरण में घुसते रहे। इतने में धूल उड़ाता हुआ शोण का रथ किनारे पर आकर रुका। हाथ में एक विशाल थाल लेकर वह जल्दी जल्दी हमारी ओर आने लगा। पास आते ही सत्यसेन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से थाल अपने हाथ में ले लिया। यज्ञ की पहली संविधा तो यज्ञ कुंड में पड़ गई होगी, मैंने उत्सुक होकर शोण से पूछा। राजभवन में महायोग की कौन सी विधियां संपन्न हो चुकी हैं? उसकी बड़ी तीव्र जिज्ञासा थी मुझको। यज्ञ मंडप जैसा का तैसा ही है। यज्ञ कुंड में संविधा पढ़ने के बजाय राजसभा में द्युत के पासे पड़ रहे हैं। यज्ञ का मुहूर्त कब का टल चुका है? शोण थाल से एक बाहुभूषण उठाता हुआ बोला। कौन कौन है सभा में? थाल से नीलवर्ण का अधरीय उठाकर उसको कमर से लपेटता हुआ मैंने पूछा। सभी हैं। इतने सभासद सभा में बैठे हुए कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। द्युत कौन कौन खेल रहे हैं? अधरीय का छोर दांत में दबाकर गीला अधरीय बदलते हुए मैंने पूछा। शकुनि मामा और युधिष्ठिर। पास एक भी पास युधिष्ठिर के अनुकूल नहीं पड़ रहा है। पहले दाव में उसने 10 लाख गायें लगाई, दूसरे दाव में इंद्रप्रस्थ की राज्य संपत्ति और तीसरे दाव में सेवक सेविकाओं सहित सारा राज्य। मेरी कलाई पर भुजा पर कंठ में एक एक आभूषण चढ़ाता हुआ वह उत्सुक होकर बताने लगा। युधिष्ठिर संयम निग्रह और धर्माधर्म का उपदेश देने वाला विवेक युधिष्ठिर दूत खेल रहा है। इस बात में मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर अब तक क्या क्या हो चुका है? मैंने गंगा के लपलपाते हुए लहरों की ओर देखते हुए पूछा। युधिष्ठिर सब कुछ हार गया है। भीम उसको रोकने के लिए बीच बीच में चिल्लाता है। जैसे वह चिल्लाता है मामा पासे फेंकते हैं। भीम के चिल्लाने से पासे की कौड़ियां अजीब ढंग से थरथरा उठती हैं, लेकिन यह बात किसी के ध्यान में ही नहीं आई है। उसने थाल में रखा पीतवाणी उत्तरी भी मेरे कंधे पर पहना दिया, किंतु इंद्रप्रस्थ के जिस रहस्यमय मुकुट के लिए मैंने कहा था उसे वह लाया ही नहीं था। मैंने जो मुकुट बताया था भूषागण भूषणागार में वह क्यों नहीं लाए? बहुत ढूंढा डकोरी की, लेकिन वह मुकुट भूषणागार में मिला ही नहीं। वह एक अन्य मुकुट ले आया था, उसी को मेरे सिर पर रखकर नीचे बैठकर मेरे पैरों में पदत्राण पहनाकर उसके सुनहले रंग के दृढ़ बंध उसने कसकर बांधे। भैया तुम अब जल्दी राज्यसभा में चलो। मैं जब यहाँ आने लगा था उस समय युधिष्ठिर अपने साथ अपने 4 भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इस घोर दाव पर लगा चुका था। यदि वह दाव पर जीत जाएगा तो मामा द्वीप में जीती उसकी समस्त संपत्ति व राज उसे वापस लौटा देंगे, ऐसा मामा ने स्वीकार कर लिया। इतने कष्टों से दिग्विजय कर प्राप्त किया वह राज उसने द्वीप की कौड़ियों पर कैसे लुटा दिया? भैया चलो। मैंने उसकी भुजा पकड़ ली। मेरी आंखों के आगे राजसभा का दृश्य खड़ा होने लगा। तो मामा ने अपने कथनानुसार 4 पट्टियों वाले पट में पांडवों को सचमुच लपेट लिया था। अट्टहास करने वाले भीम के बड़े बड़े दांतों को मामा ने पासे कौड़ियों से ही तोड़ दिए थे, लेकिन भीम के बोलते ही पासे कौड़ियां थरथरा क्यों जाती थी? मेरे हाथों से गिरने पर भी तो वो वैसे ही थरथराई थी। क्यों? जैसे कुल का वृषभ मध्यस्थ दंड के चारों ओर घूमता रहता है, वैसे ही मेरा मन इन प्रश्नों के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अपने कटी की दुकूल में खोसे हुए मेरे कर्णाभूषण निकालकर उनको मेरे कानों में पहनाने के लिए शोण चलता चलता एकदम रुक गया। मेरे कानों के पास हाथ ले जाकर वह उनको पहनाने वाला था, परंतु तत्क्षण हाथ नीचे कर वह रुक गया। उसके चेहरे का भाव क्षण प्रति क्षण बदलने लगा। वही भाव था जो थोड़ी देर पहले सत्यसेन की मुखमुद्रा पर दिखाई दे रहा था। क्यों, क्या हुआ शोण? भैया वह रुक गया। उसका सांवला चेहरा काला पड़ने लगा। आंखों की पुतलियां तेजी से घूमने लगी। भैया तुम आज राज्यसभा मत जाओ, इसलिए कि वहां जाकर मेरे भूलने पर कौड़ियां ऐसे ही थर्राएंगी जैसे भीम के बोलने में थर्राती हैं, और थर्राकर वे कौरवों के पक्ष में पड़ेंगी। नहीं लेकिन, वह पुनः रुक गया। लेकिन क्या? कहो तो सही, राज्यसभा में मैं क्यों नहीं जाऊं? उसके कंधे जोर से हिलाता हुआ मैं चिल्लाया। तुम्हारे कुंडल आज फिर निस्तेज हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया। वह फिर बोला, डंठल से टूटे हुए फूल की तरह। उसके शब्द खोलते लावरस जैसे एक बार फिर मेरे कानों में घुसे। मैंने सत्यसेन की ओर देखा। वह सिर झुकाए पूर्ववत कोड़े के दंड से मालूम मेरे खाएं खींच रहा था। वह जो कहना चाहता था उसे छोड़ ने कह दिया था। छोड़, आज कुंडल निश्चेज हो जाए या टूट गिर पड़े, मैं राज्यसभा में अवश्य जाऊंगा। नहीं भैया, आज मत जाओ। द्युत एक ऐसा सत्य है जिस पर किसी का विश्वास नहीं। उसका विरोध तीव्र होने लगा। उसकी तेजस्वी आंखों में भाई के वालों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। सत्य एक ऐसा द्वित्य है शोण, जिसको सब मानते हैं। आज सत्य के द्वित्य में पांडवों के पास उल्टे पड़े हैं। जीवन भर वे सदैव कर्ण से उल्टे पड़ते आए थे। चलो, मैंने उनका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, कम से कम मेरे लिए आज मत जाओ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कितनी आर्द्रता थी उसकी पकड़ में। शोण, मैं उपदेश नहीं चाहता। मैंने उसका हाथ छिड़क दिया। सत्यसेन के हाथ से कोड़ा खींचकर रथ की ओर जाते हुए मैंने उसको सावधान करते हुए कहा, सत्यसेन, शोण को उसके रथ में वापस ले जाओ। और शोण, तुम भी यह कभी मत भूलना कि तुम कर्ण के भाई हो। मैंने शोण की ओर बिना देखे ही कहा था। रथ पर चढ़ते ही मैंने तेजी से कशाघात किए। घोड़े दौड़ पड़े इधर उधर। किनारे की तप्त बालू के गर्भ से ऊपर उठते हुए धधकती अग्नि ज्वालाओं को मेरी भुजाओं ने तीव्रता से अनुभव किया। मेरा चर्म अभेद्य था, लेकिन स्पर्शहीन थोड़े ही था।